अगला शीर्षक है सरनाम सिंह शर्मा अरुण द्वारा रचित केशव के दार्शनिक सिद्धांत। केशव न तो तुलसी और सूर की भांति एकांततः भक्त थे और न शंकराचार्य की भांति दार्शनिक, फिर भी दर्शन और भक्ति के सिद्धांतों की एक क्षीण झांकी उनके काव्य में मिल ही जाती है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति और दर्शन में अंतर होते हुए भी उनमें एक सामान्य संबंध सूत्र रहता है। उन दोनों में उतना ही अंतर है जितना भावना और सिद्धांत में। भक्ति भावना प्रधान और दर्शन सिद्धांत प्रधान होता है। यह केवल स्थूल भेद है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर तो दोनों में कोई तात्विक भेद ठहर ही नहीं पाता। व्यवहार से संबंध रखने वाली भावना में भी सिद्धांतों की मान्यता पाई जाती है और सिद्धांतों में भी भावना सरस हाथ काम करता मिलता है। यही कारण है कि तुलसी जैसे भक्त को भी यन माया वसरवती विश्वमखिलम और यत सत्वाद भृसैव भाति सकलम आदि सिद्धांतोक्तियों का वक्ता पाते हैं, और कदाचित यही कारण है कि शंकर जैसे दार्शनिक को भी हम भगवान शंकर का भक्त सुनते हैं। यह बात तो रही दार्शनिकों और भक्तों की, किंतु जो लोग ना दार्शनिक हैं और ना भक्त, उनमें भी इष्ट भावना के साथ साथ पुण्य भाव पाप जीवन मरण सुख दुख आदि विचारों की संस्थिति पाई जाती है। भारत की आर्य संतति में तो दार्शनिकता जन्म से ही पाई जाती है। भारत में ही नहीं, कुछ विचार और भाव तो सामान्यतः विश्व भर में पाए जाते हैं। यदि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम शुभाशुभम द्वारा भारत ने अपने कर्म सिद्धांत को प्रकट किया, तो एज यू सो यू रिप द्वारा इंग्लैंड ने तो उसी के प्रति पक्षपात प्रकट किया है। यदि आर्य संस्कृति की गोद में पला हुआ कोई भक्त अपनी ईष्ट भावना को इन शब्दों में प्रकट करता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी लेहु सो जान निहारा, तुम्हारी ही कृपा तुम्ही रघुनंदन जानही भगत भगत उर्वंदन, अथवा सोई जानही जेही देहु जनाई जानत तुम्ही तुम्ही होई जाई, तो फारस की संस्कृति से प्रभावित कोई अनारी बंदा अपने इष्ट के प्रति उत्कृष्टता की भावना को इस प्रकार प्रकट करता है, मकबूल जो जर्रह की दरगाह में तेरी वह मुल्तफतेह नेरे आजम नहीं होता। अतएव केशव की कृतियों में उनके दार्शनिक न होते हुए भी दार्शनिक विचार और भक्त न होते हुए भी ईष्ट भावना पाई जाती है, तो आश्चर्य भी क्या। ये बातें उनके अध्ययन और पांडित्य का परिणाम हो सकती है। यदि हम केशव को दुनियादार भी कह दें तो भी यह नहीं कह सकते कि उन्होंने परलोक की ओर से आंखें मीच रखी थी। यदि यह भी मान लिया जाए कि केशव ने गंभीरतापूर्वक कभी यह नहीं सोचा होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ आ गया हूँ और किस प्रकार अपने पद को पा सकता हूँ, तो भी हम उनके स्मत की अवज्ञा नहीं कर सकते। भले ही उन्होंने उसका प्रतिपादन योग वशिष्ठ के अनुकरण से ही क्यों ना कर दिया हो। ब्रह्मा ये समस्त जीव जिस लोकोत्तर शक्ति का प्रतिबिंब है उसको ब्रह्मा कहते हैं। सब जानी बूझियत मोही राम सुनिए सो कहो जग ब्रह्मा नाम, तिनके अशेष प्रतिबिंब जाल ते जीव जानी जग में कृपाल। उसी शक्ति को ज्योति स्वरूप निरीह और निरंजन माना गया है। ज्योति निरीह निरंजन मानी उस अद्भुत प्रकाशमय शक्ति से ही इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है। सकल शक्ति अनुमानिए अद्भुत ज्योति प्रकाश जाते जग को होत है उत्पत्ति स्थिति अरुणास। ये रामचंद्रिका की पंक्तियां थी। वह अमल ज्योति आनंद अनादि और अनंत है और सदैव एक रूप और स्वतंत्र रहती है। जागत चाकी ज्योति जग एक रूप स्वच्छंद वही पर ब्रह्म विष्णु और रुद्र के रूप में अपने को व्यक्त करता है। अखिल भुवन भरता ब्रह्म रुद्रादि करता वह सर्वव्यापक है। भीतर बाहर सर्वत्र उसकी गति है। कुछ लोग उसे निर्गुण मानते हैं और कुछ सगुण रूप में देखते हैं। निर्गुण एक तुम्हें जग जाने एक सदा गुणवंत बखाने। वह इंद्रियातीत अवर्ण्य अरूप और अश्रव्य है। ज्योति जगे जग मध्य तिहारी जाय कही न सुनी न निहारी। ब्रह्मा अनादि और अनंत ही नहीं अदृश्य और अपरिमेय भी है। को कहे परिमान न ताको आदि न अंत न रूप न जाको। उसने अपने गुणों के आश्रय से अनेक रूप बना लिए हैं। तुम हो गुण रूप गुणी तुम ठाए तुम एक ते रूप अनेक बनाए। वही रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्म रूप में सृष्टि की रचना करता है। सत्वगुणाश्रय वह विष्णु नाम से अखिल विश्व का प्रतिपालन करता है और तमोगुण का आश्रय लेकर रुद्र रूप से वही जगत का संहार करता है। एक है जो रजोगुण रूप तिहारो, ते ही सृष्टि रचि विधि नाम विहारो। गुण सत्व धरे तुम रक्षक जाको, अब विष्णु कहे शीघ्रो जगता को। तुम ही जग रुद्र स्वरूप सहारो, कहिए ते ही मध्य तमोगुण मारो। जगत की सत्ता उसी में है और वही जगत रूप से प्रकट हो रहा है। तुम ही जग हो, जग है तुम ही में। माया, माया का दूसरा नाम संस्कृति है, वह मोह की सहचरी है। संभ्रम विभ्रमादि उसी से उत्पन्न होते हैं, उसकी सब कथा स्वप्न के समान है। संस्कृति नाम कहावती माया, जानहु ताकहु मोह की जाया। संभ्रम विभ्रम संतति जाकी, स्वप्न समान कथा सब ताकी। सत्य रज और तम से युक्त वह माया त्रिगुणात्मिका है, वही जगत का निमित्त कारण है। केशव उसके दो रूप मानते हैं, एक रूप में उसका संबंध ब्रह्मा से रहता है। जनु माया अक्षर सहित देखी, दूसरे रूप में वह जीव बंधन का कार्य करती है। जीव बंधे सब आपनी माया, जब तक विवेक द्वारा माया के परिवार का नाश नहीं होता तब तक माया में फंसे रहने के कारण जीव की मुक्ति नहीं होती। मोहादि का नाश होने पर प्रबोधावस्था में जीव उस जीवन में ही मुक्त हो जाता है। जब विवेक हति मोह को हुई प्रबोध संयुक्त, तब ही जानो जीव को जग में जीवन मुक्त। जीव जगत के अनेक जीव ब्रह्म के अनेक प्रतिबिंब हैं। जग ब्रह्मा नाम तिनय अशेष प्रतिबिंब जाल, तेई जीव जानी जग में कृपाल। ब्रह्म और जीव का अंतर बतलाते हुए केशव ने कहा है कि ब्रह्म सदैव एक रस रहता है और जीव को अनेक जन धारण करने पड़ते हैं। सर्वज्ञ होने से ब्रह्मा को जीव दशा का पूर्ण ज्ञान है, किंतु अल्पज्ञ होने के कारण जीव ब्रह्मा की रचना को नहीं समझ पाता। तुम मादि मध्य अवसान एक, अरु जीव जन्म समुझो अनेक। तुम ही जो रची रचना विचारी, ते ही कौन भांति समझो मुरारी। वह ब्रह्म प्रतिबिंब रूप जीव स्वतः ब्रह्म में पड़कर माया के बंधन में बंध जाता है और काम क्रोध मदादि अनेक माया के आवर्तनों में पड़कर संसार में भ्रमता फिरता है। काम क्रोध मदमढ़ो अपार, जैसे जीव भ्रमे संसार। लोभ मोह मद और काम के वश में पड़ा हुआ जीव अपने सहज रूप को भूल जाता है। लोभ मद मोह बस काम जब ही भयो, भूली गयो रूप निज बोधि तिनसो गयो। वासना जिधर खींचती है वह उधर ही जाकर लीन हो जाता है। जितले जय है वासना तित तित है लह लीन। शुभ और अशुभ रूप से वासना दो प्रकार की होती है। जीवन की युग भांति दुरासा, होती शुभाशुभ रूप प्रकाशा। अशुभ वासना में फंसकर वह अनेक कुकर्म करता है, किन्हें कुकर्म मनोवच गाया। अशुभ वासना द्वारा जीव का उद्धार नहीं हो सकता, अतएव मुमुक्षु को शुभ वासना के आश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, परंतु शुभ मार्ग बड़े यत्नों से हाथ आता है। यत्नन सौ शुभ पंथ लगावे, तो अपनो तब ही पद पावे। शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को अनेक देह तो धारण करनी पड़ती है, परंतु वह मरता जीता नहीं है। जीवन मरण जड़ देह का धर्म है, जीव का नहीं। शैशव यौवन और जरा ये अवस्थाएं भी जड़ शरीर से ही संबंध रखती हैं, जीव से नहीं। बालक वृद्ध कहो तुम काको, देहनी को किंधो जीव प्रभा को। है जड़ देह कहे सब कोई, जीव सो बालक वृद्ध न होई। और भी जीव जरे न मरे नहीं छीजै, ताकह शोक कहा अब की जय। जीव ही विप्र न क्षत्रिय जानो, केवल ब्रह्मा ही मह आनो। केशव के इन दोनों छंदों में गीता की भावछाया दिख रही है। देखिए, न जियते म्रियते वा कदाचित, न हन्यते हन्य माने शरीरे। मुक्ति, केशव मुक्ति के चार प्रमुख साधन मानते हैं, साधु संग सम संतोष और विचार। मुक्ति पूरी बर द्वार के चार चतुर प्रतिहार, साधुन को सत्संग सम अरु संतोष विचार। साधु और साधारण पुरुष में अंतर होता है। साधु वह है जो कज्जल चक्रव्यूह के समान इस अगन जग में प्रविष्ट होकर भी उसे अकलंकित निगल जाता है। यह जग चक्रव्यूह किया कज्जल कलित अगाधु तामह पैठी जो निकसय अकलंकित सौ साधु। उर्दू के एक कवि ने ईश्वर भक्ति के लक्षण में उपर्युक्त भाव को ही अभिव्यक्त किया। आलद्य दुनिया नहीं, वह मस्ताना है उसका। सम उस अवस्था को कहते हैं जिसमें शब्द रूपादि इंद्रियार्थ मन को क्षुब्ध नहीं कर सकते। देखत हूँ बहुकाल छिए हूँ, बात कहे सुने भोग किए हूँ, सोवत जागत नेक न छोभे, सो समता सब ही महासोभे। संतोष की अवस्था में मन में किसी वस्तु की अभिलाषा का उदय नहीं होता और ना किसी वस्तु के हानि लाभ से दुख सुखी होता है। उसमें मन ईश्वर में लीन रहता है। जी अभिलाषा न काहू की आवे, आए गए सुख दुख न पावे, लय परमानंद सो मन लावे, सो सब माही संतोष कहावे। मुक्ति का चौथा साधन विचार है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से किस लिए आया हूँ, अपने वास्तविक पद को पाना मेरा कर्तव्य है, कौन मेरा मित्र है, कौन अमित्र है, इस प्रकार की चिंतना को विचार कहते हैं। आयो कहाँ अब हौ कहीं को हौ, ज्यो अपनो पद पाऊं सो टो हो, बंधु अबंधु हिय महजाने, ता कहाँ लोग विचार बखाने। मुक्त पुरुष का अहंकार मिट जाता है और आत्मज्ञान की सहजावस्था में वह समदृष्टि हो जाता है। उसको विश्व एक ही रूप में दिख पड़ता है क्योंकि अहम भाव के नाश से भेद दृष्टि नष्ट हो जाती है। आपन सो अवलोक किए सब ही युक्त अयुक्त, अहम भाव मिट जाए जो कौन बद्ध को मुक्त। केशव ने मुक्तों के दो भेद किए हैं, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, जिसका हृदय और आचरण शुद्ध होते हैं, जो कर्मों से मुक्त हो जाता है, जो बाहर से मूर्ख सा जान पड़ता है पर उसका अंतःकरण ज्ञानपूर्ण होता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। बाहर हूँ अति शुद्ध हिए हूँ, जाहि न लागत कर्म किए हूँ, बाहर मूढ़ सु अंतस यानो, ता कहाँ जीवन मुक्त बखानो। विज्ञान गीता में जीवन मुक्त का लक्षण इस प्रकार दिया गया है, लोक करे सुख दुखनी वेजनी, राग विरागनी या मह आनय, डारे उपरी समूल अह तरु, कंचन कांच न जो पहचाने, बालक ज्यो भमवे भूतल में भवम, आपुन से जड़ जंगम जाने, केशव वेद पुराण प्रमाण तिन्ह सब जीवन मुक्त बखाने। विज्ञान गीता में केशव का जीवन मुक्ति का लक्षण शंकराचार्य की क्रम मुक्ति का आभास देने लगा है। क्रम क्रम सबको छाड़िए, ममता प्रभु मति युक्त, अहंकार परिहास के हुजय जीवन मुक्त। विदेह मुक्त जीवन मुक्त से भिन्न माना गया है, वह देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता। इस रूपात्मक जगत में उसका आचरण चित्रलिपि के समान होता है, वह स्वयं निरीह होते हुए भी परीक्षा से सरागति बना रहता है और चिदानंद में लीन रहता है। देखत हूँ अनदेखत हूँ, लिपि रूपक से न स्वरूप को धावे, आपु अनिच्छे चले पर इच्छे, सो केशव दास सदागति गावे। हुए अतिमत चिदानंद, मध्यनी लोग सदेह विदेह कहावे। केशव के मत से शरीर मुक्ति प्राप्ति में बाधा नहीं डालता, योग साधन द्वारा सदेह मुक्ति बिल्कुल संभव है। जो चाहे जीवन अति अनंत, सो साधे प्राणायाम मंत। शुभ पूरक कुंभ मान जानी, अरु रेचकादि सुखदानी मानी, जो क्रम क्रम साधे साधु धीर, सो तुमही मिले याही शरीर। योग साधना में समाधि के लिए जहाँ वे निश्चलत्व और निर्वासनत्व की आवश्यकता पर जोर देते हैं, वहाँ पूर्ण प्रेम पर भी जोर देते हैं। साथ साथ वे पूर्ण प्रेम के लिए एकांतता का विस्मरण करा देते हैं। आनहु ज्योति हिय अविनाशी, अच्छे निरंजन दीप प्रकाशी, निश्चल वेश समाधि विहार है, वासना अंग पतंगनी जा रहे, शुद्ध स्वभाव के नीर नहावे, पूर्ण प्रेम समाधि ही लावे, मूल चिदानंद फूलनी पूजय, औरन केशव पूज न दूजय। परंतु जब तक मन का विरोध नहीं होता, मुक्ति के सब साधन निष्फल सिद्ध होते हैं। अतएव मुक्ति का मूल साधन मन का निरोध है। गीता में मनुष्यों के बंधन मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। मन एव मनुष्यानाम कारणम मन बंध मोक्षयो। केशव इसी से मिलते जुलते भाव को अपने शब्दों में इस प्रकार प्रकट करते हैं, मन ही दिन ही गांठी प्रभु, मन ही पै छुर आऊ। गीताकार ने कारणम बंध मोक्षयो कहकर इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एक प्रकार से जगत का कर्ता हर्ता मन ही है, जीवन मरण के भ्रम में डालने वाला मन ही है। मन एक ऐसा दुधारा खंग है जो एक धार से मुक्ति को काटता है दूसरे से बंधन को। वह कभी हमारा मित्र होता है तो कभी शत्रु। जग को कारण एक मन, मन को जीत अचीत, मन को मन सुनी शत्रु है, मन ही को मन मीत। अनेक विशेषणों के मन के रूप और स्वभाव को अभिव्यक्त करते हुए यजुर्वेद में भी मन के सिर्फ संकल्प की कामना प्रकट की गई है। केशव ने अन्यत्र मन की विशालता बतलाते हुए कहा है कि वह समुद्र में भी नहीं समा सकता। केशव यह मानते हैं कि मन आकाश के समान अरूप है, परंतु वे यह भी मानते हैं कि वह बुद्धि के हाथ में रहता है। बुद्धि ही उसे ढील देती है, वही उसे खींच भी सकती है। मन को रूप अरूप है, जैसो है आकाश, बढ़त बढ़ाए बुद्धि के, घटत घटाए आस। मन और इंद्रियों का वही संबंध है जो गरुड़ और सर्पों का। मन के निग्रह से इंद्रियों का दमन स्वतः ही हो जाता है, परंतु मनोनिग्रह हंसी खेल नहीं है, उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, अतः धीरे धीरे ही संभव होता है। हरे हरे मनु ऐची कह, कीजय मन को हाथ, इंद्रिय सर्प समान है गाड़ूड़ मन के साथ। मन के प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हैं। जब बुद्धि उसे ढील दे देती है तो वह प्रवृत्ति मार्ग पर संभ्रम और आतुरता की अवस्था में व्याकुल फिरता है, और जब उसे खींचकर निवृत्ति पथ पर चलाया जाता है तो वह स्थिर और शांत हो जाता है। केशव ने इसी भाव को अलंकारिक शैली में इस प्रकार व्यक्त किया है, इस माय विलोकी कह, उपजाइयो मनपूत, सुंदरी तिहि द्वय करी, तिहितय त्रिलोक अभूत। एक नाम निवृत्ति है जग, एक प्रवृत्ति सुजान, वंश त्वय ताते भय यह लोक मानी प्रमाण। महामोहदय आदि हम जाय जगत प्रवृत्ति, सुमुखी विवेक ही आदि दय प्रगटत भय निवृत्ति। निवृत्ति मार्ग पर चलना आरंभ करते ही मन को कामादि से लोहा लेना पड़ता है। काम क्रोध ही जीती कह, मद लोभ मोह निवारी। निवृत्ति पथ पर विरति या वैराग्य का संबल लेकर चलना पड़ता है। वैराग्य भाव के बिना इस मार्ग पर चलना असंभव है। मन में विरति का उदय होते ही जगत की अवस्थता और क्षणभंगुरता का नग्न रूप साधक के समक्ष आ जाता है, या जग में कछु नाही की प्रतीति से मन को जगत से ग्लानी होने लगती है और वह उससे मुड़ चलता है। जिस प्रकार फूल चुनता हुआ माली कबीर को चेतावनी दे जाता है, उसी प्रकार चिता में जलता हुआ सब केशव के चित्त में नश्वर शरीर और ऐहिक सुखों के प्रति ग्लानी उत्पन्न कर देता है। रामचंद्रिका की पंक्तियां देखिए, पेट चढ़च्यो पलना पलका चढ़ी, पालकीहू चढ़ी मुह मढ़च्यो रे, चौक चढ़च्यो चित्र सारी चढ़च्यो, गज बाजी चढ़च्यो गढ़ पर्व चढ़च्यो रे, व्योम विमान चढ़च्यो ही रह्यो कही, केशव सो कबहू न पढ़च्यो रे, चेतत नाही रह्यो चढ़ी चित्त, सो चाहत मूढ़ चिताहु चढ़च्यो रे। जब मनुष्य को इस बात की पूर्ण प्रतीति हो जाती है कि यमलोक को उसे एकाकी ही जाना है, उसके इष्ट मित्र और बंधु बांधव उसका साथ ना देंगे, तो फिर उसे उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता, अतः वह राम की ओर मुड़ता है। हाथी न साथी न घोर न चेरे, न गाँव न ठाऊँ कुठाऊँ बिले हैं, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित न तिय कहूँ संग रह हैं, केशव काम के राम बिसारत और निकामरे काम न ऐ हैं, चेती रे चेती अंजौ चित अंतर अंतक लोक अकेलाई जय है, इस जगत में सुख नहीं है जग मुह सुख न गूनिए। जीव आवागमन के भ्रमरों से भटकता हुआ अनेक दुख पाता है। मरण ही जीव न तजहि, मरी मरी जनमन भजहि। यह जानते हुए भी कि शरीर क्षण भंगूर है, जगत मिथ्या है, जो आया है उसे जाना है, यहाँ अपना कुछ नहीं, ममता से पीछा नहीं छूटता, यह ममता जीव मात्र के पीछे पड़ी हुई है। माछी कहे अपनाओ घरु माछरू, मूसव कहे अपनाओ घरु ऐसव, कोने घुसी कहे घुसी घिनौनी, बिलारी और ब्याल बिलय महावैसम, कीटक स्वान सौ पक्षी और भिक्षुक, भूत कहें भ्रमजाल है जैसो, हूँ कहा अपनी घरु तह सही, ता घरु सौ अपनो घर कैसो। नाश की गति मनुष्य शरीर के ही साथ नहीं हुई, अपितु अखिल दृश्य जगत उसकी परिधि में आ जाता है। औरों की तो गणना ही क्या, ब्रह्मा विष्णु और महेश तक नाश की परिधि में रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि दय जितने दृश्य शरीर, नाश हेतु धावत सवै ज्यों बड़वानल नीर। कबीर की भांति केशव भी जगत को काल चबेना मानते हैं। जितने चिरचिर जीव जग अघ उरग कै लोक, अजर अमर अज अमित जन कवलित काल सलोक। वैसे तो काम वर्ग के सभी सदस्य प्रबल हैं, परंतु उनमें काम महाप्रबल है। काम से पीछा छुड़ाने के लिए नारी का त्याग करना अनिवार्य है। जब तक काम पीछे लगा हुआ है तब तक जगत से मोह नहीं टूट सकता, और जगत से परांगमुख हुए बिना सुख नहीं मिल सकता। जहाँ भामिनी भोग तहाँ, बिन भामिनी कह भोग, भामिनी छुटे जग छुटे, जग छुटे सुख योग। कमारी शत्रुओं के हाथ में जीव की दुर्दशा का संक्षिप्त परिचय केशव ने इस प्रकार दिया है। खैचत लोभ दसौ दिशी कौ, गही मोह महायत फांसही डारे, ऊंचे तय गर्व विरावत क्रोध हु, जिवही लूहर लावत मारे। ऐसे में कोढ़ की खाज ज्यों केशव, मारत कामहू बाण निनारे, मारत पाच करे पंचकुटही, कासौ कहे जगजीव विचारे। देह के प्रति आकर्षण रखने वालों को सचेत करने के लिए जरावस्था में होने वाली उसकी दुर्दशा का चित्र केशव इस प्रकार से खींचते हैं। कपै उर बानी डगै पड्डी थी, त्वचाती कुचै सकुचै मति बेली, नवै नवग्रीव थकै गति केशव, बालक तय संग ही संग खेली, लिए सब आधिन व्याधिन संग, जरा जब आवे ज्वरा की सहेली, भगय सब देह दशा जिय साथ, रहे दुरी दौरी दुरासा अकेली। तो ये था केशव के दार्शनिक सिद्धांत, जो यही समाप्त होते हैं।